कहीं ना कहीं आकाश की आंखों में डर और साथ ही साथ उसके गुस्से में उसे सच्चाई नजर आई थी। तब डॉक्टर रश्मि ने सोचा कि शायद वाकई इस वक्त किसी को उसकी जरूरत है, तो डॉक्टर रश्मि ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। तब आकाश ने उसके बालों को छोड़ा था। डॉक्टर रश्मि ने फटाफट से अपना किट उठा लिया था, क्योंकि अपनी एक किट वो हमेशा अपने पास रखकर सोया करती थी कि ना जाने कब किसे उसकी जरूरत पड़ जाए। और फटाफट से जैसे ही वो आकाश के साथ जाने लगी, आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा। तीसरा अध्याय। आकाश ने उसका हाथ कसकर पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा था और धीमी आवाज में बोला, ये क्या कर रही हो तुम? तब डॉक्टर रश्मि बोली, क्या कर रही हूँ मतलब? तुमने तो बोला है कि किसी को मेरी जरूरत है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तभी आकाश झल्लाते हुए बोला, क्या इस तरह से तुम सबके सामने जाओगी? हाँ, आकाश ने उसके कपड़ों की ओर इशारा किया था। तब डॉक्टर रश्मि को भी अपने पहने हुए कपड़ों का एहसास हुआ और वो आकाश से नजरें चुराते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ। उसने आकाश से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। अब जैसे डॉक्टर रश्मि ने कहा, आकाश तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया था और मन में बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे मुंह दूसरी तरफ करने को इस तरह कह रही है जैसे मैंने अभी कुछ देखा ही ना हो। वो अगले पल जल्दी से डॉक्टर रश्मि ने अपनी नाइटी के ऊपर का शर्ट अच्छी तरह से पहन लिया था, जो कि पूरी बाजू का था, जिससे उसका पूरा शरीर कवर हो चुका था। फिर अपना ब्रीफकेस उठाकर वो बोली, अब चलो। तब आकाश ने उसकी ओर देखा और ये देखकर कि अब डॉक्टर रश्मि के जिस्म का कोई भी हिस्सा रिवील नहीं हो रहा है, तो वो उसकी देखकर तिरछा सा मुस्कुराया। लेकिन ये मुस्कुराहट केवल कुछ ही पल के लिए थी, जिसे कोई भी देख नहीं पाया था, और जल्दी ही वो आगे कदम बढ़ाकर चल दिया था और रश्मि उसके ठीक पीछे पीछे जाने लगी थी। और जल्दी ही आकाश रश्मि को सीधा सिंघानिया मेंशन के उस तहखाने के पास ले गया था, जहां पर डॉक्टर रश्मि मेंशन के तहखाने को देखकर हैरान थी। आकाश आगे आगे जा रहा था और उसके ठीक पीछे पीछे रश्मि जा रही थी। आकाश इस बीच उसे कुछ भी नहीं बोला, वो तो बस हैरानी से देखते हुए आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही उसकी नज़र घायल अरमान पर पड़ी, तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। और फटाफट से वो उसके पास गई और डरी हुई आवाज में बोली, अरमान, अरमान उठो प्लीज, ये क्या हुआ तुम्हें? अरमान अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक था और फिर अचानक से इसे कैसे क्या हो गया है? ऐसा कहकर वो बारी बारी से कभी सुमित को देख रही थी तो कभी आकाश को देख रही थी। तभी सुमित बोला, डॉक्टर रश्मि प्लीज, इस वक्त फिलहाल ये बातें या सवाल या जवाब करने का नहीं टाइम नहीं है, आप फटाफट से अरमान की ड्रेसिंग कर दीजिए, क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है। अब जैसे ही सुमित ने ये बोला, रश्मि ने बिना देरी किए फटाफट से अरमान को ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया था। पहले उसने अच्छी तरह से उसकी ड्रेसिंग की, उसका पूरा शरीर खून से भरा हुआ था, तो भला डॉक्टर रश्मि उसको पूरे शरीर को कैसे साफ कर सकती थी? और कहीं ना कहीं रश्मि की हिचकिचाहट, रश्मि का इस तरह से रिएक्ट करना आकाश ने देख लिया था। वो बोला, डोंट वरी, तुम सिर्फ उसके हाथ की ड्रेसिंग करो, उसके बाद उसके ब्लड को हम अपने आप क्लीन कर देंगे। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, रश्मि ने राहत की सांस ली और फटाफट से उसने अरमान के हाथों के जख्म को अच्छी तरह से साफ करके वहां पर कुछ स्टिचेस करने के बाद उसने पट्टी कर दी थी। और उसके बाद वो एक नज़र सुमित और आकाश की ओर देखते हुए, रश्मि ने जल्दी ही अरमान को कुछ इंजेक्शन भी दे दिए थे, और फिर आकाश की ओर देखते हुए बोली, अरमान को अब अगली सुबह ही होश आ पाएगा, मैंने ड्रेसिंग कर दी है, साथ साथ उसे कुछ इंजेक्शंस दिए हैं जिससे उसे वीकनेस कम होगी और पेन कम होगा, पर इस तरह से इसे ब्लड की हालत में नहीं रहना चाहिए, तो उसको आप दोनों अच्छी तरह से क्लीन कर दें, वरना इसे इन्फेक्शन हो सकता है प्लीज। क्योंकि इस वक्त अरमान बड़ा ही भयानक और खतरनाक सा लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान बुरी तरह से घबरा जाता। जब इतनी बड़ी डॉक्टर रश्मि, जो कि ने कितने बुरे से बुरे एक्सीडेंट केस और ना जाने क्या क्या केस हैंडल कर चुकी थी, वो इस तरह से उसे देखकर सहम गई थी, तो बाकी लोगों की क्या औकात थी। वहीं डॉक्टर रश्मि जैसे ही अपना ब्रीफकेस लेकर वहां से जाने लगी, अचानक से उसका ब्रीफकेस उसके हाथ से छूट गया था, क्योंकि उसके ठीक सामने आस्था को खड़ी हुई देख लिया था। फ्लैशबैक। जब आकाश डॉक्टर रश्मि को लेकर जा रहा था, ठीक उसी वक्त आस्था की भी आंखें खुल गई थी, क्योंकि वो डॉक्टर रश्मि का हाथ पकड़कर सोई हुई थी, क्योंकि उसे अरमान से काफी डर लग रहा था। लेकिन यूं रात के वक्त डॉक्टर रश्मि का इस तरह से आकाश के साथ जाता हुआ देखकर आस्था को कहीं ना कहीं अजीब लगा था, इसलिए वो उन दोनों के पीछे पीछे तहखाने तक आ गई थी। फ्लैशबैक एंड। और इस बीच उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अब आस्था को अपने सामने देखने के बाद आकाश और सुमित भी हैरान हो गए थे, लेकिन आस्था तो जोरों से चीखने लगी थी। वो तो लकीली वो पूरा का पूरा तहखाना साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं गई थी, वरना अभी तक पूरे के पूरे लोग उठ चुके होते। तभी आकाश जल्दी से आस्था के पास गया और उससे बोला, आस्था प्लीज, इस तरह से पैनिक मत करो प्लीज आस्था। लेकिन आस्था तो उस वक्त अरमान को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रही थी, क्योंकि वो बड़ा ही खूंखार लग रहा था। तब आकाश ने डॉक्टर रश्मि की ओर इशारा किया। वो समझ चुका था कि आस्था इस तरह से नहीं रुकेगी, और वैसे भी डॉक्टर रश्मि समझ चुकी थी कि इस तरह से खून देखने के बाद आस्था को एक बार फिर से पैनिक अटैक आना शुरू हो गया है, तो फटाफट से उसने आस्था को भी एक इंजेक्शन दे दिया था। जिसकी वजह से आस्था जल्दी ही गहरी नींद में चली गई थी। तब रश्मि ने आस्था की मदद से आस्था को एक बेड पर लेटा दिया था जो कि अरमान से थोड़ी ही दूरी पर था, क्योंकि इस हालत में आस्था को उसके कमरे में भी लेकर नहीं जा सकते थे। अगर कोई देख लेता तो उनके इतने सारे सवालों के जवाब कौन देता। तो इसीलिए जैसे ही आकाश ने आस्था को लेटाया, आकाश ने सुमित से कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी सुबह के 4 बज चुके हैं और सुबह तक अरमान को भी होश आ जाएगा और आस्था तो ऑलरेडी काफी देर तक सोएगी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि ने बताया है कि उसने उसे पैनिक अटैक से बचने के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए हैं जिसका असर अभी काफी देर तक रहता है। तो इस तरह से हमें यहाँ से चलना चाहिए और वैसे भी दादाजी और ध्रुव आहन के सवालों के भी जवाब देने होंगे। ये सोचते हुए जल्दी ही वो दोनों भी वहाँ से निकल चुके थे। वहीं अब उस तहखाने में केवल अरमान और आस्था ही थे जो कि बेहोश थे। कल डॉक्टर रश्मि अपने कमरे में तो आ गई थी, लेकिन अरमान का चेहरा उसकी आंखों से जा ही नहीं रहा था, जिस वजह से डॉक्टर रश्मि सो ही नहीं पा रही थी। उसने अपने कमरे की लाइट चला रखी थी क्योंकि जितने भी पेशेंट के ट्रीटमेंट किए थे वो ऑलमोस्ट दिन में ही किए थे और उसने ऐसे एक्सीडेंट में काफी भयानक चेहरे भी देखे थे। लेकिन अरमान सिंघानिया का जो चेहरा था, क्योंकि ये बात साफ थी कि उसका हाथ से इतना खून लगकर उसके शरीर पर नहीं जा सकता था, तो इसका मतलब साफ था कि अरमान के शरीर पर जो उस वक्त खून था वो उसका तो नहीं था बल्कि किसी और का था। तो ये बात रश्मि को अंदर ही अंदर डरा रही थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रही थी। वहीं सुमित और आकाश जैसे अपने अपने कमरे में जाने लगे और आकाश ने रश्मि के कमरे की जलती हुई लाइट देखे तो वो समझ चुका था कि इस वक्त उसके दिमाग में कितने सवाल चल रहे होंगे। तो वो नहीं चाहता कि अरमान को इस बात के बारे में पता चले कि डॉक्टर रश्मि ने उसकी ड्रेसिंग की थी।
और डॉक्टर रश्मि ने अगर कभी अरमान से सवाल करेगी कि वो खून किसका था तो ये बात तो अरमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये बात वो जानता था, तो उसको इस बात का एहसास था, इसीलिए आकाश रश्मि के कमरे में चला गया था। सुमित हैरानी से आकाश को डॉक्टर रश्मि के कमरे में जाते हुए देख रहा था, फिर अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। रश्मि उस वक्त कमरे में टहल रही थी। उसने एक बार फिर आकर अपने नाइटी का ऊपर का पहना हुआ शर्क उतार दिया था क्योंकि उसके बाजू पर अरमान का ट्रीटमेंट करते वक्त कुछ ब्लड भी लग चुका था, लेकिन उसकी जो अंदर की पहनी हुई नाइटी थी वो एकदम क्लीन थी। वहीं आकाश जैसे ही उसके कमरे में आया और उसने रश्मि को देखा तो देखता ही रह गया था। रश्मि बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं रश्मि जल्दी जल्दी में कुंडी लगाना भूल गई थी जिसकी वजह से आकाश वहां आ गया था। वेल, जैसे ही रश्मि ने अपने सामने आकाश को पाया तो वो उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी थी और अगले पल उसका ध्यान अपनी हालत पर गया था। फटाफट से उसने बेडशीट से ही खुद को कवर करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक आकाश ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया था और उससे बोला, ये सब ड्रामा मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने कमरे की लाइट इसलिए खुली छोड़ी है ना ताकि मैं तुम्हारे कमरे में आऊं। अगर तुम मुझे अपने आप को इस तरह से दिखाना ही चाहती थी तो इस तरह से अब खुद को ढकने की कोशिश क्यों कर रही हो। जैसे ही एक बार फिर आकाश ने रश्मि पर अपनी ज़ुबान से वार किया, अब रश्मि गुस्से से बौखला गई थी और गुस्से से उसकी ओर देखकर बोली, मिस्टर आकाश, अपनी हद में रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि तुम मुझ पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाओ, समझे तुम? और वैसे भी अगर मैं तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ तो तुम इस वक्त इस कमरे में मेरे साथ में क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत बड़ी महान आत्मा हो ना, तुम तो लड़कियों को ऐसे देखना पसंद भी नहीं करते होंगे ना। तो एक काम करो, यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाओ और अपनी इज्जत बचाओ, कहीं मैं तुम्हारी इज्जत ही ना लूट लूँ। रश्मि की बात सुनकर आकाश हाइपर हो गया था। फटाफट से उसने रश्मि का मुंह अपने हाथों से पकड़ा था और उसका मुंह जोरों से भींचते हुए बोला, खबरदार जो तुमने मुझसे ऐसे बात की तो। और मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत देना और अरमान से भूलकर भी किसी तरह के कोई क्वेश्चंस मत करना। और रही बात उस खून की, वो खून किसका था या किसका नहीं ये अपने दिमाग से निकाल दो। तब रश्मि हैरान हो गई और सोचने लगी कि इसे कैसे पता चला कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ। लेकिन आकाश तुरंत उसके चेहरे के हाव भाव पढ़कर समझ गया कि वो क्या सोच रही है, तो वो डेंजरस टोन में बोला, तुम्हें ज्यादा अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे ये कैसे पता चला कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। और वो आगे बोला, जो कुछ भी तुमने किया है या जो कुछ भी तुमने देखा है उसे सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, किसी और के सामने मुंह खोलने की कोशिश मत करना। अगर तुमने किसी से भी एक बार भी कुछ भी शेयर करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन भी हो सकता है। ऐसा कहकर उसके हाथ को छोड़कर उसे बेड की ओर धकेलता हुआ आकाश कमरे से बाहर निकल गया था। वहीं रश्मि आकाश के इस तरह के बर्ताव पर पूरी तरह से चौंक गई थी। और लास्ट वाली ये बात कि अगर उसने इस बात के बारे में किसी को बताया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, ये बात उसे हैरान कर गई। वो सोचने लगी कि आखिरकार अरमान का ऐसा कौन सा राज है जो वो नहीं जानती, क्योंकि जहां तक वो अरमान को शुरू से जानती है या समझती है उसे ये तो पता था कि अरमान एक बड़ा ही खड़ूस टाइप और एरोगेंट किस्म का है और उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन आज आकाश की बातें सुनकर उसे ऐसा लगने लगा था मानो कि अरमान की कोई और भी पहचान हो। वेल, यही सब सोचते हुए उसे एहसास नहीं रहा कब वो नींद की आगोश में चली गई। वहीं दूसरी ओर तहखाने में अगली सुबह अरमान सिंघानिया की आंख खुल चुकी थी और जैसे ही उसने अपने आप को मेंशन के तहखाने में पाया तो उसके चेहरे पर अपने आप एक मुस्कुराहट आ गई थी और आराम से उठा और उठकर अपने आसपास देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने ठीक बराबर वाले बेड पर सोती हुई आस्था पर पड़ी तो वो हैरान हो गया और वो मन में बोला कि ये आफत यहाँ तहखाने क्या कर रही है, कहीं इस आफत ने तो मुझे उस हालत में नहीं देख लिया। कहीं ना कहीं अरमान के दिमाग में कितने ही सारे सवाल आ रहे थे कि ठीक उसी वक्त सुमित वहां आ गया था, क्योंकि सुमित जानता था कि अगर अरमान सुबह उठ जाता है तो उसके दिमाग में कितने ही सारे सवाल चल रहे होंगे और अगर आस्था को इस तरह से अपने पास देखेगा तो कहीं वो उसे हर्ट न कर दे, क्योंकि जब से अरमान ने उस पर हाथ उठाया था साथ ही साथ उसकी जान लेने की कोशिश की थी तब से हर कोई अरमान और आस्था को एक साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आस्था की जान फ्री फंड में जाए।